نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم حليلا سورة نساء کی آیت نمبر 125 اور کس کا دین اس سے اچھا یعنی اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آج کا پورا سیشن ہے ڈسکور یور سیلف، اپنے آپ کو ڈھونڈیے۔ تلاش تو کل سے ہی کر رہے ہیں، ایک سیشن پیچھے گزر چکا ہے، یاد رکھیے، جو بھی ساتھی سنیں پچھلا بھی سن لیں تو تھوڑا سا ربط قائم ہو جائے گا۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم خود کو تلاش کریں۔ کیوں بھائی، آپ کوئی بھی چیز کیوں تلاش کرتے ہیں؟ کوئی مقصد ہوتا ہے نا۔ کسی جگہ کا ایڈریس ڈھونڈتے ہیں، کسی جگہ کے جانے کا وقت، اوپن کلوز، اور اسی طرح سے مسجد کا راستہ کون پوچھتا ہے کہ جس نے جانا ہے وہاں۔ بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ ہم نے خود کو کیوں تلاش کرنا ہے۔ سوال لکھیے آج کے سیشن کا پہلا سوال آپ کے لیے، چلیے، کہ ہم خود کو کیوں تلاش کریں، کیا کرنا ہے میرا۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ فلاں چیز تلاش کرو تو اگلا سوال یہ ہوتا ہے کیوں، آپ نے اسے کیا کرنا ہے۔ ماں کہتی ہے ذرا دیکھنا ادھر نمک ہے، وہ کہے گی نمک کو کیا کرنا ہے، کسی چیز میں ڈالنا ہوتا ہے نا۔ تو یاد رکھیے کہ تلاش کا سفر رک نہیں جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ تو ساری زندگی نہیں خود کو تلاش کرتے۔ مجھے بھی ایک دو نے بزرگوں میں سے کل پوچھا، اس میں کیا بتانا ہے، لو اب کوئی ہم گمے ہوئے جو ہم خود کو تلاش کریں۔ تو یہ تو ایک نیچرل سا رسپانس تھا جو کسی کا بھی آ سکتا ہے۔ لیکن میرا آپ سے اور آپ کا خود سے ایک سوال ہونا چاہیے، میں خود کو کیوں تلاش کروں؟ وائی شوڈ آئی سرچ فار مائی سیلف، میں کیوں کروں؟ تو اس کا جواب، اس لیے کہ میں خود کو تلاش کروں تاکہ اپنی خوبیوں کو دیکھ کر دوسروں کو اس سے نفع دے سکوں، اور اپنی خامیوں کو اس لیے تلاش کروں تاکہ اپنی ذات میں سے چن چن کر ایک ایک وہ چیز نکال پھینکوں کہ جو مجھے دوسروں کو نفع دینے سے روکتی ہے۔ تو پھر تلاش کا یہ سفر کس لیے؟ تاکہ بی پروڈکٹیو، اپنے آپ کو پہچانیے اور نفع مند بنیے۔ فطرت کا اصول ہے کہ ہر چیز اپنے بات کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا چاہتی ہے۔ اگر آپ اور میں اپنے بات کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، جس پہ ہمارا ڈے ون کلوز ہوا تھا کہ بی فروٹفل، کچھ دے کر جائیے، ڈائی ایمٹی، آخری لفظ یہی تھے کچھ اس سے پچھلا اگر آپ سیشن سنتے ہیں۔ تو جب ایک شخص دنیا سے جانے سے پہلے اپنا کچھ چھوڑنا چاہتا ہے، ماں قدم و آثارہم کی صورت میں وہ بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے اچھے اثرات بنا کر چھوڑنا چاہتا ہے، اور المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا کی صورت میں وہ مال اور اولاد اور دنیا کی دولت کو باقیات الصالحات میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈالر کو آپ اپنے لوکل ملک کی کرنسی میں چینج کرتے ہیں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ظاہری بات ہے کہ ڈالرز ہر ملک، ہر جگہ، ہر سٹور، ہر گیس اسٹیشن پہ تو نہیں چلیں گے نا۔ تو کوئی بھی کسی ملک میں رہنے والا اس مثال سے سمجھ لے کہ جب ہم کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو ہمیں ادھر کی لوکل کرنسی چاہیے ہوتی ہے۔ چاہے اپنی جگہوں میں ہمارے پاس کتنی ہی زمینیں اپنے نام پہ لگی دکھیں، ہمارے پاس دوسری کرنسی بھی رکھی ہو، لیکن آپ چائے کا ایک کپ نہیں لے سکتے جہاں لکھا ہوتا ہے کیش اونلی، اور وی ڈونٹ ایکسیپٹ کریڈٹ کارڈس۔ بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھے جو نعمتیں اور جو سکلز، جو چیزیں دی ہیں نا، اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ کرنا کیا ہوتا ہے کہ ان کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے، اور جب کنورشن ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد یوزیج شروع ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو تلاش کر کے اپنی کمی بیشیوں کو دور کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرنا ہے۔ نوٹ کیا ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ بھوک لگی ہو تو نوٹ سے بھوک نہ مٹے، سردی لگ رہی ہو تو نوٹ سے سردی نہ رکے، پاؤں تھکے ہوں اور پاؤں میں کانٹے چبھ رہے ہوں تو نوٹ نیچے پاؤں کے رکھنے سے کانٹے نکل نہ جائیں۔ لیکن اسی نوٹ کو استعمال کر کے ہم گرم کپڑے بھی خرید لیتے ہیں، اور اسی سے جوتا بھی خرید لیتے ہیں، और इसी तरह की दूसरी चीज़ें। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिए, अल्लाह ताला ने आपको मुझे बहुत कुछ दिया है। लिखिए आज अपने आप को इस बात का यकीन दिलाइए, मैं आई एम सब नहीं। जब हम वही का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों। मैं मास्टर पीस हूँ, अल्लाह ताला का शाहकार हूँ मैं। फिर लिखिए कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अल्लाह ताला ने मुझे आंखें कान जो दिया है वो तो सबको दिया है, मुझे अल्लाह ने इससे बढ़कर दिया है। और वो कह लीजिए कि एक टैलेंट की सूरत में आपके मेरे अंदर छुपा हुआ है। लफ्ज़ लिखिए टैलेंट। टैलेंट क्या होता है? अगर आपने ये लफ्ज़ कभी बोला और सुना हो तो आप बड़ी अच्छी तरह से इसको पहचान लेते हैं। छुपे हुए गिफ्ट्स हैं, अल्लाह सुब्हान ताला ने कुछ तोहफे हमें सामने दे दिए, आंखें कान हाथ की सूरत में। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानम व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। सूरत बलद में अल्लाह ताला ने इन तीन नेमतों का तذکرہ कर दिया कि जिसमें आंखें भी हैं, होंठ भी हैं, जुबान भी है, और साथ ही पूछ लिया कि तुम्हें इतना कुछ दिया, तुम्हें मिल गया? डिड यू रिसीव दिस? आप किसी को कोई गिफ्ट भेजते हैं और फिर आप एक आध दिन बाद पूछते हैं आपको कोई पैकेज मिला, और ख़ुद भी कान लग जाते हैं कि अभी अगले का फ़ोन आएगा और गिफ्ट देखकर वो खुश खुश हो जाएगा कि आपने मुझे ये दिया और वो दिया। तो याद रखिए इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको मुझे इस दुनिया में भेजने से पहले कुछ ज़ाहरी गिफ्ट दे दिए, ज़रूरियात ज़िंदगी की सूरत में, जैसे आपके हस्बैंड ग्रोसरी चीज़ें आम तौर पर इस्तेमाल की लाते रहते हैं, बाप भी लाते हैं, भाई भी लाते हैं, जो भी घर का टेक केयर है वो लाता है ना, ये नहीं को पैक करके लाता, बस इसको ला कर बैग्स में दे दिया, ज़रूरत की चीज़ है इस्तेमाल कीजिए। लेकिन कभी कभी गिफ्ट होता है, वो किसी खास मौके पे हो सकता है, वो किसी जज्बाती लम्हे को सेलिब्रेट करने के लिए हो सकता है, तो उसको फिर वो बहुत छुपा के देता है, कानो कान खबर नहीं होती। और आज हमारे कल्चर में ये जो एक रिवाज पड़ गया सरप्राइज़ देने का, न जाने कहाँ से पड़ गया, लेकिन चलिए किसी हद तक इंसान इंजॉय करता है इस सोच से कि जब उसको ये चीज़ मिलेगी तो वो खुश कितना होगा। बिल्कुल इसी तरह से लिखिए। तो अब आपने अब ये पॉइंट्स लिखने हैं, ये आपकी सेल्फ डिस्कवरीज हो रही हैं क्योंकि आप अपनी तलाश में हैं, आपने बेनिफिशियल बनना है, आपने दूसरों को खैर के अंबर लेके जाना है। तो ज़िंदगी में याद रखिए कि अल्लाह ताला ने जो आपको मुझे नेमतें दी हैं वो दो किस्म की हैं। एक वो है जो सबको दी, आँख कान हाथ, फाइव लिम्स कह लीजिए, हवा से खमसा कह लीजिए, और वो अमीर के भी हैं, गरीब के भी हैं, वो गोरे के भी हैं, काले के हैं, शक्ल सूरत रंग ढंग, काला हो गोरा हो, जो ये सामने दिखता है, अल्लाह ताला ने ये सबको दिया, एक ही जितना दिया है। एक माँ के पेट से पैदा होने वाले 6 बच्चों में तकरीबन 98% चीज़ें वही होती हैं जो दूसरों में भी होती हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जिसको आप कह सकते हैं कि छुपा के दी, रैपिंग पेपर्स में दी हुई हैं। अल्लाह ताला कहते हैं तुम खुद उसको एक्सप्लोर करो। हाथ में क्यों नहीं कोई गिफ्ट दे देता? एक खुशबू की बॉटल हाथ में क्यों नहीं कोई देता? आपको कोई ज्वेलरी कोई हाथ में क्यों नहीं पकड़ाता? आपको कहते हैं नहीं, यू नीड टू ओपन इट। हमने छुपा दिया एक तो सरप्राइज, दूसरी हिफाजत, तीसरी उसकी कदरदानी, और हमारे दिल में इतने जज्बे थे आपके लिए कि समझ ही नहीं आ रहा था, तो हम मोहब्बत से उस गिफ्ट को पैक करके छुपा के दे रहे हैं। और हकीकत है कि जिससे आपका जितना प्यारा ताल्लुक होता है ना, आप उतना उसको छुपा के देते हैं, और जब वो गिफ्ट रस्म बन जाती है तो स्टेज पे सबके सामने मूवी में दिखा दिखा कर सास को कड़े पहनाए जाते हैं और लोगों को शर्मिंदा किया जाता है गिफ्ट देकर सारे मजमे में कि ये हमारी तरफ से आपके लिए और ये हमारे स्कूल की तरफ से और फुलां फुलां। याद रखिए कि गिफ्ट का ताल्लुक बहुत पर्सनल होता है, आप मुझे दें मैं आपको दूं, मेरी मर्जी मैं जो दूं आपकी मर्जी मैं दूं। वरना होता क्या है कि जब रस्म बनती है तो लोग अगले दिन दुल्हन से पूछते हैं दूल्हा ने क्या दिया, सास ने क्या दिया, अच्छा बेटे की माँ को क्या पहनाया, उसमें फिर पूछगिछ शुरू हो जाती है, और अगर ज़रा सा हल्का हो तो लोग उसमें मोहब्बत को बिल्कुल माइनस कर देते हैं। लिखिए आपके लिए कोड वर्ड देने लगी हूँ क्योंकि ये सेल्फ डिस्कवरी का वक्त है, और मेरा गुमान है कि आप इस तरह कॉन्शियस बैठे हुए इस वक्त हिल भी नहीं रहे, आपको अपने सांस की आवाज़ भी वजह लग रही है, कोई मूवमेंट नहीं है आपके इर्द गिर्द क्योंकि आप इतना सेंसिटिव काम कर रहे हैं। जैसे वही बात है कि पार्लर में किसी के सामने बैठी हुई स्टैचू बनी हुई लड़की जो उसको बताता है कि ज़रा सी मेरी हरकत जो है वो मेरे मेकअप को ख़राब करा देगी, सो ऑन। तो जब आप अंदर से अपने आप को खूबसूरत देखना और करना चाहते हैं तो उसके लिए भी तो फिर ऐसी है। तो लिखिएगा जुमला, अल्लाह ताला ने आपको मुझे जो गिफ्ट में से खूबसूरत चीज़ दी है उसका नाम है टैलेंट, और टैलेंट के छुपा खजाना। हमारा टैलेंट हमारी ज़ात में छुपा हुआ कुदरत का एक ख़जाना होता है, ये वही नाम है जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखा होता है, जिस काम के मतलब इंसान के अंदर ये ख़जाना होता है ना, चाहते हुए भी इंसान का हाथ उस काम की तरफ चला ही जाता है, आंख उस तरफ उठी जाती है, यहाँ तक के दिल को सुकून भी उसी काम से मिलता है जिसमें आपके टैलेंट का इजहार हो रहा हो। और लिख लीजिए कि टैलेंट इंसान को तंग करता है, वो कहते हैं ना, हाथों में खुजली होती है, अनचले नहीं बैठ सकते। आपको कुछ करना आता और दूसरा आपके सामने वही काम गलत कर रहा हो ना, तो आप कहते हैं इसको पीछे करो, ब्रश मुझे दो, ये कलम मुझे दो, ये छुरी चाकू मुझे दो। यही तो मसला कि सासों को बहुओं का पकाया हुआ खाना अच्छा नहीं लग रहा होता शुरू में। ये देखो कितना फैला दिया, देखो सब्जी इतनी काट दी, इतने मोटे छिलके लगा दिए, रोटी देखो। हाँ तो लिखिएगा, टैलेंट छुपा हुआ खजाना। और ये बच्चे की तरह आपको तंग करता है, शरारती बच्चा होता है ना, तंग करता है। और लिखिए, आपके मेरे अंदर ये खजाना छुपा दिया मालिक ने, कि जब ये बड़ा होगा ना, ये खुद एक्सप्लोर करेगा। बच्चा पैदा होता है, लोग उसकी आंखों पे बात करते, कानों पे बात करते, और उसकी शक्ल, और खूबसूरत हो तो कहते हैं नानी पे गया, और ज़रा सा बेचारे का रंग दबा हो तो कहते हैं दादी की दूसरी तस्वीर है, और कुछ भी ना हो तो वो कहते हैं कि जी स्मार्ट बहुत है। बहरहाल ये आपके मेरे कमेंट्स होते हैं, ये लोग देख लेते हैं पैदा होते ही। लेकिन टैलेंट आपका मेरा छुपा हुआ वो खजाना है जिसको एक्सप्लोर करना होता है। सवाल पैदा होता है, किसकी मदद चाहिए? इसके लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है। किसी ने कहा, जो असल टीचर होते हैं ना, वो खुद शनासी में मुआविन होते हैं, वो इंसान को उसके असल के करीब कर देते हैं। तो फिर पूछिए खुद से, क्या आपको अभी तक ऐसा कोई टीचर मिला जिसने आपके अंदर को खोल के बाहर रख दिया? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम मुसलमानों के समेत पूरी दुनिया, जिससे दुनिया बड़ी इंप्रेस भी है और जिसको हायर एजुकेशन भी कहते हैं, उसमें से अक्सर जगह पे बंदे को एक्सप्लोर नहीं करते, सिर्फ कुछ मालूमात दी जाती हैं और सो ऑन। वरना आप देखिए कि 188 यूनिवर्सिटीज़ जिस मुल्क में हो, वहाँ का तो हर फर्द अपने आप को पढ़ चुका हो। किसी ने कहा कि मैंने 20 साल तालीम ली, मुझे एक उस्ताद वो नहीं मिला कि जो मुझे बता सकता कि तेरे में खूबी ये है। कहा, फिर आपको कैसे पता चली? करा जाता है, एक शख्स बस उससे वास्ता पड़ा, उसकी बात सुनी, 1 घंटे का दर्स सुना, उस दर्स ने तो मेरे अंदर हलचल मचा दी और मैंने जाके एक्सप्लोर किया तो मैं तो वही थी। इसी तरह मैं किसी एक और की बात सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं पिछली 8-10 साल की तालीम में देखूं तो मैं बिल्कुल उससे मुख्तलिफ हो गया हूँ जो मैं अपने इब्तदाई दौर में था। यानी मिसाल है, आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा मैट्रिक तक फेल होता हो और FA FSC में वो टॉप करे। वजह, मैट्रिक तक हर एक ने उसको डिस्करेज ही किया, तू नहीं कर सकता, तेरे अंदर ये नहीं है, तू बेकार है, तू निकम्मा है। और यहाँ मैं पेरेंटिंग की बात करूँगी, मैंने आपसे पीछे वादा किया था चंद चीज़ों का, कि एक तो आपको आपके यूथ का स्किल्स और उनका टैलेंट उभारना और उससे फ़ायदा लेना सिखाऊंगी। अपने बच्चों को एक्सप्लोर कीजिए। माँ इतनी जहीन होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे, एक एक बच्चे, 4 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, उनको एक्सप्लोर करे। अभी तो बस इतना कह लीजिए कि आपकी मेरी ज़िंदगी के अंदर जो छुपे हुए टैलेंट हैं, उसको पहले तो माँ एक्सप्लोर करती है। माँ समझदार हो, जहीन हो, वो छोटे बच्चे को ही देख लेती कि इसकी आंखों में चमक है, वो बेटी को देख के कहती ये बनेगा। फिर उसके बाद उस्ताद होते हैं, लेकिन वो उस्ताद नहीं जो बस आते हैं और सबक पढ़ाकर निकल गए और उनकी नज़र ये कि सफ़ा पूरा हो जाए और जो सिलेबस हमें पीछे से मिला है हमने कवर करके वो क्लिक करना है, जी हमने पढ़ा दिया। और बाज़ लोग कापियों के सफ़े गिनते रहते हैं, आज 10 पढ़ाने हैं, आज 6 पढ़ाने हैं, आज 8 पढ़ाने हैं। वो उस्ताद नहीं, वो कोई और ही नज़र होती है जो आपको एक दिन कहता है, बात सुने, आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी है, मेहनत कीजिए। जूँ ही आप उसका ये जुमला सुनते हैं ना, तो आप फोकस्ड होकर उसी पे मेहनत करने लगते हैं। तो टैलेंट को जाहिर करना, ये है खुद को जाहिर करना। अपनी तलाश में आपने जाकर कोई अपनी अंदर से बायोग्राफी नहीं ढूंढनी। आज आप देखिए, एक रिपोर्ट लीजिए ब्लड की, आपका दूध का दूध पानी का पानी बाहर कर देंगे। आप में कैल्शियम इतनी, पोटाशियम इतना, मैग्नीशियम इतना है, आप में व्हाइट सेल्स इतने, ब्लैक इतने, फलां, सब टेस्ट करते हैं। वो किसी ने कहा, बचपन में स्कूल के टेस्ट होते थे, फिर ज़रा से जवान हुए तो हमारे सिलेक्शन के साथ टेस्ट होने लगे, कई कई नाम है, और ज़रा से जब बूढ़े होने लगते हैं तो फिर शुगर टेस्ट और ब्लड टेस्ट और फलां। तो वो एक भाई था, तो वो बड़ा था, दूसरा छोटा था, बड़ा काफ़ी जॉली था, तो दोनों को ही शक था कि इनको शुगर है, तो छोटे की शुगर टेस्ट में ज़्यादा आई बड़े की निस्बत। तो उसने कहा, देखा, मेरे बचपन में भी नंबर तुमसे ज़्यादा ही आते थे, तो आप मेरी शुगर भी तुमसे ज़्यादा आई। तो बहरहाल आप इंजॉय करें इस जुमले को, लिखिए, आपको मुझे अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना है। अफसोस के साथ कहूँ, कुछ लोगों को ना माँ इतनी समझदार मिलती है, ना कोई उस्ताद ऐसा मिलता है कि जो उसकी आंखों में आंखें डाल के कह सके, सुनो आप मेरी बात मानिए, इस पे काम कीजिए, इट्स योर टैलेंट। वरना पता क्या होता है, टैलेंट को एक्सप्लोर किए बगैर नुकसान क्या होता है? बंदा काम तो करता है लेकिन हारा हुआ। एक रिसर्च मैंने पढ़ रही थी और मैं हैरान रह गई कि एक बंदा अगर अपनी एवरेज स्टाइल जो भी ज़िंदगी में है अगर उसको देखिए ना, तो जितना टाइम, मिसाल है कि 60s ले लीजिए, बचपन जवानी सब कुछ कर करा के निकाल दीजिए, 93 1000 आवर्स अपनी जिंदगी के इंसान अपने वर्क प्लेस पे गुजारता है। 90,000 घंटे रोता ही रह जाएगा अगर उसने सही प्रोफेशन चूज नहीं किया। वो कोई ऐसा काम अपने ऊपर ले ले जिसमें बोर हो, थकन हो, परेशानी हो, समझ लीजिए ये काम उसका नहीं था। तो याद रखिए, आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, तो लिखिए वो कौन सा काम है जो करती हूँ तो वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। रात गुजर जाती है, अरे फजर में आधा घंटा रह गया, पढ़ के सोऊंगी। ये है आपकी असल, ये है आपका टैलेंट, ये है आपका एक्सप्लोर योर सेल्फ। लेकिन बहुत सारे लोग जिंदगी में क्या करते हैं ये आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि टैलेंट वो खूबी है जो कुर्बानियाँ देने पे मजबूर करती है, वो आपको वक्त से आज़ाद कर देती है, वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। और चौथी चीज़ लिखिए कि मुआवजे की परवाह से आज़ाद कर देता टैलेंट आपको। ऐसी मालूमात आपके अंदर इकट्ठी होने लगती हैं कि उस टैलेंट के मुतल्लिक लोग आपके खुद बहुत करीब आने लगते हैं। लोग बताते हैं, एक तीसरा सोर्स भी लिख लीजिए, मानद बता सकी, उस्ताद ऐसा कोई ना मिला, तो थोड़े अरसे बाद आपको लोग बताएंगे आपकी ये चीज़ बड़ी अच्छी है। आपके दोस्त, आपके दुश्मन, और दुश्मन जान लेते हैं, बताते कम ही हैं। और जो ही एक फूल की तरह आप खिलते जाते हैं, अपनी ज़िंदगी की 20, 25, 30, 35 बहारें देखते हैं, तो फिर आपको भी यकीन आ जाता है दैट्स माई टैलेंट। फिर अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाता है। जो भी टैलेंट होगा आपकी ज़िंदगी में, अगर आप एक स्पिरिचुअल ह्यूमन है ना, आपका ताल्लुक अल्लाह से बहुत मजबूत है, तो आप एक जुमला कहते हैं, अल्लाह मुझे ज़ाया ना करना। जैसे हज़रत हाजरा ने कहा था ना कि फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। ये दुआ कभी आपने तन्हाई में मांगी होगी, कबूलियत इसकी सारी दुनिया देखती है। और फिर इसी के ख्वाब भी आने लगते हैं। ये जो आप अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी को नबूवत मिलने से पहले सच्चे ख्वाब आने शुरू हो गए थे ना, वो भी इसी टैलेंट का एक हिसार था। जिस चीज़ में आप संजीदा, सीरियस, फोकस्ड, मोटिवेटेड हो जाते हैं, आपको उसके ख्वाब भी आते हैं, रस्ते बनते हैं। वो कहते हैं ना कि फिर रुकावटें दूर होने लगती हैं। दो नीमिन की ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़, इनकी खैबत से राय। ये क्या है शेर कि जब आप इतनी तेजी से चल रहे होते हैं ना, तो दरिया भी रास्ता देना शुरू हो जाते हैं और पहाड़ भी हटते हैं कि पीछे हो जाओ, इनको जाने दो। जैसे मूसा के लिए पानी रुक गया, फिर वो रुकावटें आपके आगे नहीं रहती। क्यों? क्योंकि गाड़ी तेज आ रही है, तो अगले ने तो अपनी जान बचानी है ना, कि ये लगता है मुझे टक्कर मारेगा, जाने दो इसको आगे। और ड्राइविंग का एक असूल जो मुझे अपने किसी बड़े प्यारे ने बताया था कि अगर ऐसा चलोगी तो सब तुमसे आगे ही होंगे, पीछे वालों ने इंडिकेटर दे दे के तुमसे आगे निकल जाना, कि कौन आप जैसे स्लो बंदे के पीछे रहे। और अगर तेज चलेंगे तो सब आपके पीछे रहेंगे क्योंकि आप उनसे आगे हैं। तो आपको मुझे अपने टैलेंट को तलाश करना। अब अपनी उम्र लिखिए ना, बताइए मुझे आप 25 से ऊपर, 30 से ऊपर, 35 से ऊपर, 40 से ऊपर हैं आप, और आप मेरी ये बात आज सुन रहे हैं, तो आपका तो रोना कोई ना देखे। कौन आपके आंसू पहुँचाए, कितने टिश्यू पेपर्स हैं जो आपके हाथ में दिए जाएं, आप कहेंगे 40 साल की उम्र में ये जुमला समझ आए, आप पीछे कैसे जाऊँ, दुनिया की जिंदगी के सफर में बैक ट्रैक नहीं है। देर इज़ नो यू टर्न इन द लाइफ। और अफसोस की बात बताऊँ, किसी का कॉल याद आ रहा है, पता नहीं किसका था, बहुत पहले, कि मुझे तो डेथ बेड पे पता चला कि मेरे अंदर इतना कुछ था। हमारे यहाँ जब लोगों को फारिग कर दिया जाता है किसी खूबसूरत नाम के साथ, रिटायरमेंट, और तालियों की गूंज में आपको सारी ज़िंदगी की कोशिशों के बदले में एक शील्ड और कुछ पेंशन नमा चीज़ें दे के फारिग किया जाता है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम, कि उस वक्त आप पूरी तरह पक चुके होते हैं। वो मीठा आम जो खाने के काबिल हो, लोग कहते हैं हट जाओ इधर से, अब नया बंदा लाएंगे आगे, फितरत का असूल नहीं है। एक्सप्लोर योर टैलेंट एंड बी बेनिफिशियल। और आप जितना अपने टैलेंट को जल्दी जानेंगे ना, आपकी खूबी उतनी बढ़ेगी। एक छोटे बच्चे को पढ़ा रही हूँ आजकल, अपने ही आप को ज़िंदा रखने के लिए और अपना बचपन याद रखने के लिए, तो मैं उसको कह रही थी कि बेटा अगर मैं आपकी एज की हो जाऊँ तो मेरी ये ख्वाहिश होगी अपने बारे में, तो आप तो अभी इस उम्र में हो, आप कर लीजिए। फिर वो जो बच्चों के प्यारे प्यारे मासूम सवाल आते हैं, वो मेरा दिल खुश कर देते हैं। तो लिखिएगा, टैलेंट कुर्बानी देने पे मजबूर करेगा आपको। ये जितनी आपको लोगों में दिखती हैं ना कुर्बानियाँ, फिर कहते हैं हाय आप तो इतनी कुर्बानियाँ दी, हाय आप थकते नहीं, हाय आप ये नहीं, आप नहीं। इसलिए आप देखिए, जिसको लिखने का शौक होता है आधी रात को बैठ के लिखना शुरू हो जाता है, जिसको बोलने का शौक है वो कहते हैं बस मुझे दो बंदे साथ दे दो, बस मुझे दो घंटे बुला लो, आ एक कप चाय दे देना, उसके बाद फिर दो घंटे बोल लूँगा। ये अंदर का टैलेंट उभरता है। और जिसको जो काम करना नहीं आता उसमें थकता है, बोर होता है, रोना आ रहा होता है, हाय नहीं मैंने काम पर होता है, कोई ज़रूरी नहीं हर बंदा वही काम करे। इसके लिए ना माल की जरूरत होती है ना अप्रिसिएशन की। और लिखिए, आप अपने टैलेंट के मुताबिक जी रहे हैं ना, तो आपको लोगों से ना तालियों की जरूरत, ना आपको सुभान अल्लाह की जरूरत, ना आपको शुक्रिया, तारीफ और तनकीद से बेनियाज करता है आपका टैलेंट। तो जब इंसान अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करता है तो फिर कह लीजिए वो दरवेश बन जाता है। जो जंगल में भी डेरा लगाता है ना, तो लोग चल चल कर उसके पास आने लगते हैं और पगडंडियाँ खुद ही बन जाती हैं। मैंने इशफाक अहमद साहब का एक कॉल पीछे कहीं मेरा हेले डोंट बी सैड के सेशंस में कोट किया था, वो याद आ गया अभी भी। कहते हैं बंदे में कोई गुर हो ना, लोग कहते हैं जी मार्केटिंग चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, और जी हमें जगह दें, फिर कोई ऐसी 10-12 मुतालबे करके बंदा सोचता है कि मेरे से कोई फ़ायदा लेगा, और फिर इतने नखरे, इतनी बातें, टाइम ही नहीं है, ये नहीं है। कहते कुछ नहीं चाहिए होता, आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है ना, कोने में जाकर बैठ जाए, आपके साथ कोई बंदा नहीं है जो आपको सपोर्ट करे, और वहाँ बैठकर जो आता है ना वो लोगों को देना शुरू कर दें, तो लोग इतने आएंगे थोड़े थोड़े दिन बाद, एक जाएगा उसको नफ़ा पहुंचा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आएगा, कि वो रास्ते खुद ही बन जाएंगे, लोग रास्ता देखकर आपके पास आ जाएंगे। शर्त एक है, बी बेनिफिशियल, बी प्रोडक्टिव। चलिए इस पे बात तो और बहुत करनी है, लेकिन आज जो आपके लिए तरतीब सोची हुई है उसके लिए भी इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चंद सेकेंड रुकती हूँ। सब सुनने वाले, जहाँ से भी सुन रहे हैं, सब खुद से पूछिए, ये बात समझ आ गई है कि सबसे बड़ी चीज़ अपना टैलेंट। क्योंकि टैलेंट समझे बगैर काम करना बिल्कुल ऐसे है कि बगैर ड्राइविंग किए ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी को चलाने शुरू कर दें। करीब ही कोई बैठा आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग कंट्रोल कर लेगा ना, तो इंशाल्लाह इतना हादसा नहीं होगा। आप पोर्च में थे और आप घर के बाहर की थोड़े से दालान में थे, लेकिन अगर हाईवे पे पहुंच गए तो फिर लगता है समझ। लिखिए, दूसरों को देख देख कर हमारा दिल करता है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने थोड़े बहुत इल्म को समझ के गाड़ी डाल दी हाईवे पे, अब हाईवे की स्पीड ही नहीं कंट्रोल हो रही, गाड़ी भी कांप रही है, आप भी कांप रहे हैं। बहुत सारे लोग यही कुछ करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपने मैंने इंशाल्लाह आपने आपको एक्सप्लोर करना है। अपना टैलेंट देखिए, अपना स्टेमिना देखिए। आप गाड़ी में बैठते हैं, मैंने अक्सर एलबील गाड़ियों में सफ़र करने वालों को देखा है, चले उधर, हाँ चलते हैं, वक्त गाड़ी में इतनी बिजली नहीं है, ये बता रही है ये इतने किलोमीटर चलेगी, जा तो सकती है वापस नहीं आएगी, बीच में बंद हो सकती है, अच्छा फिर चलो फिर इसको कहीं चार्ज करते हैं। क्या आपको अपने सेल फोन का टैलेंट नहीं दिख रहा होता कि ये बंद होने वाला, ये ब्लिंक होने वाला, ये हो रहा है? क्या हम ऐसे धड़भूंगली काम करते हैं? पर्स में आपके 100 रुपये है और आप 500 रुपये का सामान अपनी बास्केट में रखते हैं, मुझे खुद बताइए। क्या आपके पास चलने की आधा किलोमीटर भी ताकत नहीं है और आप 2 किलोमीटर वाली रोड ले लेते हैं जिससे आप वापस नहीं आना, और वापस भी आए तो जितना के उतना आना पड़ेगा? नहीं करते। क्यों हम अपने ऊपर बोझ डालते हैं जो सहार नहीं सकते? 98% लोग यही करते हैं। इस बात को सुनने के लिए आपको इस लेक्चर को एंड तक सुनना पड़ेगा। हमारी प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं, और जो मैंने शुरू में चंद बातें स्टूडेंट से की थी आपसे भी कर लेती हूँ। एक मछली पकड़ने वाला 20 साल से मछलियाँ पकड़ रहा है फिर भी वही गलतियाँ कर रहा है, ये सैड बात है। एक ड्राइवर 20 साल से गाड़ी चला रहा है आज भी वही गलती है उसकी जो 20 साल पहले थी। जैसे मिसाल दी कि बीवी से पहले बाप को कच्ची रोटी भी खिला दी तो वो भी मोहब्बत में खा गए, तो मियाँ के नसीब में क्या कच्ची रोटियाँ ही हैं आपके हाथ की? ये खाना जलता था आपका 15 साल पहले, अब भी जलता है, दैट मीन्स यू आर नॉट इम्प्रूविंग। हमारा ये हाल है। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं अपने ऊपर लेती हूँ, सच्ची बात है, मैं अपनी सबसे बड़ी कटहरे में जिसको मैं खड़ा करती हूँ, अल्लाह जानता है, मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, वो मैं खुद होती हूँ। पहले तो सुन ही नहीं पाती थी मैं, कई साल मेरा नहीं ख्याल मैंने अपनी रिकॉर्डिंग सुनी हो, तब वीडियोस वाले तो सवाल ही नहीं थे। इतना गुस्सा, इतनी कोफ्त आती थी, क्या बताऊं। और आज भी मुझे याद है कि जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग को एडिट करने का किसी ने मशवरा दिया और देखी, मैंने अपना पहला लेक्चर खुद एडिट किया। कैन यू बिलीव इट, जितनी एडिटिंग टीम है अल्लाह उनको करवट करवट बदले दे, कि क्लिक पे अल्लाह ताला उनके घरों में रहमतों को नाजिल कर दे, उनकी नस्लों को इसकी खैर पहुंचे, उनके माँ बाप को पहुंचे। पहला लेक्चर मैंने खुद एडिट किया, और आपको बता दूँ ये मेरी गलती है, लेकिन मैं खुशी से बताती हूँ अपनी गलतियाँ। 45 मिनट का लेक्चर नॉर्मली मैं तब देती थी, अमेरिका में थी तब, लोकल दर्स का टाइम 1 से 1.5 घंटा होता था, जिसमें ला साहब के लाख के निकाल कर लेक्चर अंदर 45 से 50 मिनट था, आखिरी 10 मिनट में रैप अप और कोई बातचीत, शेयरिंग वेयरिंग, और आगे कुछ चीज़ें अनाउंसमेंट्स की और दुआ। 1.5 घंटा पूरा होता था वो। 42 मिनट का या 45 होगा लेक्चर, 15 मिनट का रह गया, ये भी जुमला काटो ये भी काटो, ऐसे खुद को छांटा है ना, क्या कोई माली पौधे को कैंची के साथ काटे। ये एक दिन का सफर नहीं है, हम सफ़र के आगाज़ में ही मंजिल देखने के शौकीन होते हैं, इसलिए गड़बड़ें करते हैं। तो लिहाजा अपने आप को पहचानिए और नफ़ामंद बनिए। क्वेश्चन हाउ, अगला सवाल लिखिए, कैसे, किससे सीखूं? तो सबसे पहले कायनात से सीखिए। मैं आपको दो किरदार आज दे के जाना चाहती हूँ, एक बेजान दिखती है और एक जानदार शख्सियत। बस उसके बाद बाकी काम आपके अपने इर्द गिर्द बहुत सारे मेंटोर्स होंगे, आपके उस्ताद होंगे, पेरेंट्स होंगे, कामयाब इंसान दुनिया में होंगे, ये आपका नसीब, जिससे मर्जी सीख लें। लेकिन मैंने आज तक जो चीज़ें सीखी हैं ना, मैं पूरे यकीन और शऊर के साथ बैलेंस रखते हुए विदाउट एनी एग्जेजुरेशन कहूँ, मैंने 50-50 सीखा है। मेरे दो बड़े उस्ताद हैं जिनसे मैंने बहुत सीखा है, और ये वो उस्ताद हैं कि जो बूढ़े नहीं होते और जो उनके अंदर मुझे दिखते हैं ना, वो हर दिन नहीं दिखता है। पहला उस्ताद है कायनात। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लायात। कायनात पे गौर व फिक्र, कुरान पाक की आयतों को जमा करके दे दूँ तो ये एक पूरा मौजू बन जाएगा जिस पे मैं नहीं जाना चाहूँगी अभी। कायनात पे गौर, कुरान पाक में तफक्कुर पे कितनी बात है। क्यों कहा कि पूरी रात की नफिल इबादत से एक घड़ी का तफक्कुर बेहतर है? आप चलती हवा को देखकर अल्लाह के लतीफ़ होने को महसूस करें, उसके दिए हुए रंगों को देखकर पत्तों में जो चल रहे हैं, और एक एक मिडरिब और एक एक क्लोरोफिल का कतरा, और उन एक छोटे से दालान में 50 किस्म के पत्ते, ये चीज़ सोचने पे मायल करती है कोई पीछे। कायनात, सूरज को देखिए, चांद को देखिए, सितारों को देखिए, पहाड़ों को देखिए, ये है एक उस्ताद। कायनात सबसे बड़ा उस्ताद बनती है ये कायनात, जिसकी नज़र इबरत वाली हो। अल्लाह के नबी की दुआ में से एक दुआ है कि अल्लाह मेरी नज़र इबरत वाली हो। मैं एक नज़र कहीं देख जाऊँ ना तो मैं उसे बहुत कुछ ले जाऊँ। वो कहते हैं ना कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। इस शेर को तो साइड पे कर दीजिए, बहुत लोग इस पे बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसे ही ना सैरें किया करें, ऐसे ही ना बाहर जाया करें। मैं जब पहली दफ़ा मैंने नॉर्वे की ज़मीन पे पाँव रखा, बल्कि मैं पूरे मुबालगे के बगैर कहूँ पाँव भी नहीं रखा, जहाज़ की खिड़की से नीचे देखा, पीले पत्ते, छमछम बारिश और चौड़े पीपल के पत्ते, ये काम होते छोटे दरख्तों के पत्ते, वो नहीं थे। मैंने जब जहाज से नीचे देखा, मेरी एकदम, जैसे कहते हैं ना, चीख नहीं निकलती, ये क्या, लुक लुक देखे देखे, और वो पीले पत्ते। उसके बाद क्या हुआ, एयरपोर्ट के जो सारे वो मामला से क्लियर होने के बाद हम बाहर पहुंचे, हमारी बहुत प्यारी साथी हैं, नाम लेने को दिल कर रहा लेकिन नहीं लूंगी, एयरपोर्ट पे अपने हस्बैंड के साथ थी, शायद उनका बच्चा भी कोई साथ था, ना उन्होंने मुझे देखा ना मैंने उन्हें कभी देखा। आवाज़ का सफ़र था, जैसे आज भी बहुत सारों के साथ आवाज़ का सफ़र है। लोग मुझे कहते हैं आप यूट्यूब पे अपनी वीडियो क्यों नहीं देते, निकाब में दे दें, ये दे दें, मैं कहती हूँ ज़रूरत क्या, अभी काम चल रहा है चलने दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे सैकड़ों नहीं, अब हज़ारों लोगों को माशाल्लाह मिल भी चुकी हूँ, जानती हूँ। सिर्फ आवाज़ के सफ़र से सफ़र शुरू हुआ, और अगर ये आवाज़ दूसरों को उनका टैलेंट देने के लिए और उनको बात समझाने के लिए काफ़ी है, तो आपने मेरी तस्वीर लगा कर क्या कर लेना, नहीं आई कॉन्टैक्ट होता है, भाई कोशिश कीजिए ना अभी इसके साथ। कितने साल हो गए मैं इसको रिजिस्ट कर रही हूँ, और अल्लाह करे करती ही रह जाऊँ। अगर उससे कोई फ़ायदा होता है तो और बात है, फ़ायदा नहीं होता तो मुझे क्या करना है अपनी शक्ल दिखाकर। लेकिन अब वो एयरपोर्ट पे थी, और ज़ाहिर है कि एक ताल्लुक जो था उस पर मिलने को दिल, जाने को दिल, मैं निकाब में थी, गाड़ी करीब हुई, गाड़ी में बैठ गई। अब गाड़ी में बैठ के तो वो ज़ाहिर है मुझे देख नहीं पा रही थी, फील कर रही थी, तो उनकी नज़रें मुझ पर, तो मेरी नज़रें खिड़की के बाहर। आखिर मुझे अपना वो जुमला याद है कि माजरत माइंड ना कीजिएगा, घर जाके मिलते हैं, बातें करते हैं, मुझे बाहर देखने दें। बारिश थी, और क्या वो खूबसूरती थी, वो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र का प्यार था वो, पता नहीं अल्लाह क्या दिलों को पढ़ता है। फिर जो भी उसके बाद हुआ, आज भी मैं, 10 साल हो गए हैं मुझे ऑलमोस्ट, 2020 है, तो यूरोप और उसके इर्द गिर्द, यानी नॉर्वे से सफ़र शुरू कर लें, आज भी मैंने जिस दिन नॉर्वे की ज़मीन पे पाँव रखना है, मैंने दीवाने बच्चों की तरह बाहर देखना है, और मेरा दिल करता, सब कहते हैं बर्फ़ ना पड़े, मैं कहती हूँ बर्फ़ पड़ती देखो, सब कहते हैं ये पत्ते बड़े गिरते हैं, पत्ते ना गिरें, पत्ते ना गिरें, मैं कहती हूँ गिरे हुए पत्ते देखो, रंग बदले हुए देखो, लोगों को धूप अच्छी लगती है, मुझे बादल अच्छे लगते हैं, ये कायनात है। बर्फ़ को छुआ, जब मैंने फर्स्ट टाइम वाइट स्नो के ऊपर पाँव रखे, वो जगह अभी भी याद है, लो में बिल्कुल ग्रीनलैंड के अंदर एक जगह है बोरघाटा और इसी तरह की जगह हैं, गलियाँ, तो उधर ही शुरू फर्स्ट टाइम हम जहाँ भी जब रहे, जब बर्फ़ थी, वो सीन जो मेरी आंखों में, काले शूज़ और बर्फ़ पे पाँव रखूँ, मैं कैसे रखूँ, मेरी माँ तो मुझे कभी पाँव न रखने दे, अगर सफ़ेद चादर बिछी हो ज़मीन पर। फितरत शनास हो जाए, डिस्कवर योर सेल्फ, जो बंदा झरनों के पास बैठकर नफामंद बनना नहीं सीखा, उसको कोई दुनिया का उस्ताद नहीं बना सकता, बिलीव मी। और जिसके अंदर पत्तों की सरसराहट को देखकर नरमी नहीं आती ना, उसमें नहीं आनी, सॉरी टू से दैट, वो भांग भांग करके बोलेगा, फट 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 फट। जो सफ़ेद बर्फ़ पे चल के नामे अमाल को सफ़ेद नहीं कर सका ना, नहीं करेगा। ये बस अल्लाह हमारे पर्दे रखता रहे तो रखता रहे। और जो बरसती बारिश को छम छम करके उतरता देकर ये नहीं कहता कि अल्लाह मुझे भी रहमत की बारिश बना दे, और जो चढ़ते सूरज को देखकर नहीं कहता ना कि अल्लाह इस तरह का सूरज मुझे भी बना, और एक सूरज के आया सारे अंधेरे चढ़ गए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। ये बातें नहीं आपको आती? आप रात को दिन में ढलता, दिन को रात में ढलता नहीं देखते तो आप कब उस्ताद नहीं बनेगा। हम उस वक्त फ़ोनों पे बातें करते, गम सह रहे होते, गीबतें चुगलियाँ कर रहे होते, दुख सुख के नाम पे बैठे बातें। जब लोग गाड़ी में बैठते हैं, मैं भी बैठती हूँ, ज़रा जाती हूँ, मेरा दिल नहीं होता बात करने को, क्योंकि बाहर के नज़ारे इधर उधर देखने नहीं देते, सोचने को दिल करता है। इसलिए मैं दिन के ट्रैवल और फ्लाइट्स में, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स, आई लव इट। रात की फ़्लाइट में सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है, सब सोए में अंधेरा, चलो आप थके हुए तो सो जाएं, इट्स ओके। अदरवाइज सारा वक्त जहाज़ की खिड़की से देख देख के आंख नहीं थकती। लोग कभी क्या कुछ सोचा था, मैं पढ़ने से ज़्यादा सुनती हूँ जहाज़ में। तो आपका उस्ताद है कायनात। कायनात के अंदर जो कुछ राज छुपे हुए हैं ना, उसको एक्सप्लोर करने के बाद अगर आप इस नतीजे पे पहुंच जाए ना कि कायनात करती क्या, तो फिर मैं आपको अगले पे ले चलती हूँ। चलिए लिखिए, मेरा फर्स्ट टीचर कायनात। चंद लेसन सिर्फ लूँगी, गो थ्रू करेंगे, क्योंकि ये बातें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो इतनी दफ़ा अपने लेक्चर्स में की हैं, और नहीं है तो आप 2009 का दौरा कुरान होगा, इंशाल्लाह आएगा आपके सामने एक दिन, उसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर सुन लीजिए। लेसन्स फ्रॉम यूनिवर्स। हर एक कुल्लू लहू क़ानितून। किस पे फोकस्ड है? एक रब के आगे फोकस्ड है। जब तक आप फोकस्ड नहीं होते, देखिए गाड़ी में बैठने वाला मैंने अक्सर देखा है, जो भी लोग गाड़ी चलाते हैं पहले वो अपने हिसाब से सीट सेट करते हैं, फिर उसका बैलेंस सेट करते हैं, फिर उसके बाद अक्सर लोग मिरर सेट करते हैं, जो ऊपर सामने लगा होता है रियर मिरर, फिर साइड मिरर, ये है फोकस। और ये वही फोकस है जो कैमरे से तस्वीर लेने वाला अपना फोकस सेट करता रहता है। और जब आपकी मेरी नज़र कमज़ोर होती है, या हमारी नज़र का कोई इशू होता है, या चेंज होता है ना आपका आई साइट लेवल, तो उस वक्त भी फोकस ही ख़राब होता है। ज़िंदगी का फोकस, इस पर अलग भी बात करने को दिल करता है, ये इतना बड़ा टॉपिक है, हाउ टू बी फोकस्ड। लेकिन कायनात फोकस्ड है। किस पे फोकस्ड है? अपने रब के ऊपर। रब मेरा है, मैंने इस रब की बात माननी है। और आप देखिए कि सूरह यासीन की आयतें याद कर लीजिए, कुल्लू लहू क़ानितून भी है, ये तो सूरह बकरा में, वहाँ क्या है, फ़ी फ़लक़ी यस्बहून। और जब मैं इस चीज़ को पढ़ती और सुनती हूँ और समझती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इस पे बात करूँ, तो मेरा दिल करता है कि मैं मिसाल दे दूँ तो आपके मेरे इस जिस्म की दे दूँ। आप देखिए कि कायनात की सबसे खूबसूरत चीज़ इंसान है। कायनात में और बहुत सारी खूबियों में फोकस्ड होना भी है, जो आगे मैं आपके साथ जमा कर लूँगी। फिर इसी तरह सबमिट है, जिसको जो काम दिया हुआ है ना वही कर रही है, सूरज कर रहा है, सूरज एक दिन चांद नहीं बनने का चस्का लेता। फिर इसी तरह से देखिए कि जब जहाँ जिस काम का वक्त दिया उसे पे आता है। नॉर्वे की मिसाल ली है, आपके अपने मुल्कों में, यूरोप में और हर जगह सर्दियों की रातें लंबी, दिन छोटे, गर्मियों की रातें छोटी, दिन लंबे, कौन रोकता है? सूरज कहता है क्या मसला, मैं इतनी देर से बैठा हुआ, काम ही नहीं देते आप लोग, क्या फ़ायदा सीखने का? वो ऑन ड्यूटी पे मिल रही है उसको, क्योंकि कुल्लू लहू क़ानितून। तो कायनात फोकस भी है, फिर इसी तरह से कायनात जो है वो सबमिसिव भी है, फिर कायनात प्रिडिक्टेबल भी है। कायनात इस तरह से झुकी पड़ती है अल्लाह के हर हुक्म के, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, ओनरशिप शो करती है कायनात अल्लाह की। इसके अंदर लॉयल्टी है, इसमें रिलेशनशिप है। कान लगा के खड़ी है, आप पढ़िए वो आयत क्या है, वैजल और दो मुद्दत वजीनत ली रब्बिहा व हुक्कत। कान लगाए खड़ी है जमीन भी और आसमान भी, और रब के इशारे की मंतजर है कि वो कह दे कुन, तो कायनात सारी तबाह बर्बाद हो जाए। इतनी बड़ी जमीन कान लगाए खड़ी है, इतना बड़ा आसमान कान लगाए खड़ा है, तो आपकी मेरी क्या औकात है? ये लेसन फ्रॉम यूनिवर्स है। और आप जितना ज्यादा इसके ऊपर गौर करेंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और मुसलसल प्रिडिक्टेबल कैसे? आज से 5 साल बाद तक का आप कैलेंडर कैलेंडर निकाल लीजिए, बिल्कुल वही होगा। आज सूरज के साथ चांद के ऊपर भी लोगों ने गौर व फिक्र करके चांद की भी पोजीशनें ढूंढ ली। फोर सीजन पहले ही पता होता है, दिसंबर में सर्दी होगी, कम है ज्यादा है वो 19-20 तो चलती है, और वो भी हमारी हरकतें हैं कि सर्दी किधर जा रही है और गर्मी किधर। हमने इतना कायनात के सेटअप को खराब कर दिया, लेकिन बहरहाल प्रिडिक्टेबल तो है। फिर कायनात में फॉरगिव एंड फॉरगेट भी है। इंसान अल्लाह ताला का मास्टरपीस है, और हर इंसान जो आपके इर्द गिर्द है ना, और एक आप खुद भी हैं, जरा सा शीशे में खुद को देख लीजिए। जितना ज्यादा आप शीशे में देखेंगे ना अपने आप को, फिर आपकी आंख, फिर आपकी पलकें, फिर आपके होंठ, और फिर आपके वो एक एक बाल जो आपके सर से गिरते होंगे ना, सबके गिरते हैं, मेरे भी गिरते हैं, आपके भी गिरते हैं। एक एक बाल को पकड़ कर पूछें, हो तुम काले, खूबसूरती कितनी देते हो। हम उसके ऊपर स्ट्रिप्स डाल लें, हम पता नहीं क्या कुछ करते हैं, उन बालों को सजा देते हैं अपने सर पे सवार होने की, कि सर पे सवार कर लेते हैं, वो हमारी मर्जी है। लेकिन अब देखिए, तो जब आप अपने जिस्म पे तवज्जो देते हैं ना, तो आपका ये वजूद इस बात का सबूत है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला। हमारा रब एक, हमारा मालिक एक, हमारा आका एक। यूनिटी, लीडरशिप, ओनरशिप आपके मेरे इस वजूद में है। मसलन कैसे, आप देखिए कि इस कायनात का एक रब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर दो खुदा होते हैं ना, तो लफसदता तस्निया है, वाह पूरी कायनात बिगड़ जाती। मतलब वही बात जैसे ईरानी कहते हैं कि दो खुदा हैं, एक अहरमन और एक यजदा है, एक को ज़मीन का खुदा कहते हैं, एक को आसमान का कहते हैं। अल्लाह कहते हैं बिलफर्ज दो ही होते, देखिए ना एक के बाद तो दो ही है ना, तो दो ही होते तो बारिश होती। पिछले सेशन में मिसाल दी है ना बादलों की, नीचे से तो बादल बन बन के जा रहे हैं, ऊपर वाला कहता है अभी मेरी मर्जी नहीं है, तो वो वहीं बरस जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें कायनात में ज़मीन और आसमान के कोऑर्डिनेशन से हो रही है, मतलब फल फसलों का पकना, बारिशें भी आती हैं, सूरज भी ऊपर से आता है, रोशनी देता है, नीचे ज़मीन से दाना निकलता है, और बहुत कुछ है, मिलते हैं तो बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है। जैसे शौहर बीवी अलग हैं तो कुछ भी नहीं, और जब एक साथ होते हैं तो अल्लाह एक नई नस्ल का वजूद ले आता है। अगर आप सिर्फ लफ्ज़ इंसान पर गौर करें तो आपको यकीन आ जाएगा कि एक, फिर आप देखिए हमारा रब एक, मालिक एक और आका एक। ये है वो फितरत का गुंदा हुआ अहद जो अल्लाह ने हमारी फितरत में भी डाला और कायनात में दिया। फिर आप देखिए जिस्म में दिल एक है, दिमाग एक है, जबकि बाहर की दुनिया में आप देखते हैं तो सूरज भी एक है, चांद भी एक है। इसके बरक्स आप देखिए कि हमारी बॉडी में बहुत सारे अज़ा हैं, मसलन चलिए दिल एक है, दिमाग एक है ना, तो गुर्दे दो हैं, इसी तरह से बाजू दो हैं, हाथ दो हैं, उंगलियां हमारी 20 हैं, नाक एक है, माथा एक है, बल्कि नाक और माथे की हड्डी एक ही होती है, जमा करें तो ये शुरू से के ऊपर से नीचे तक आती है। कान दो हैं, आंखें दो हैं, होंठ के दो पल्ले हैं, दिल एक क्यों है? ये रईसुल अज़ा है, सदर है, ये सदरे पाकिस्तान नहीं है, ये सदरे अपना नाम लिख लीजिए, आपके अंदर का सदर है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है कि सूरज एक है, चांद भी एक है, सूरज एक है, चांद एक है, सितारे बहुत सारे हैं, सूरज एक है, किरणें बहुत सारी हैं। फिर इसे देखिए, ब्रेन एक है, दिमाग एक है, क्यों? जिस्म के वो अज़ा जो एक एक है ना, कह लीजिए कि वो मास्टर्स हैं। अब मुझे वो सिलसिला याद आ गया जो हमने दिल को बदलने की तज़किया सीरीज में किया था, और उसकी मिसाल याद आ गई कि जिस्म पे हुक्मरानी है, हुक्मरान दिल है। ये जितने बॉडी ऑर्गन्स हैं ना, हाथ आंखें पा, ये रियाया हैं। आपके हाथ, आपकी आंखें, आपके कान वही करते हैं जो आपका दिल कहता है। यहाँ वो दूसरा वादा पूरा करती हूँ कि अपनी यूथ का टैलेंट कैसे उभारें, अपने बच्चों को कैसे स्किल करें तो उनके दिल को बदल दें। आप कहते हैं ना कि मैं अपने बच्चों को बदल दूंगी, मैं उनको कहूँगी नमाज़ पढ़ो तो पढ़ने लग जाएंगे, आप उन्हें कहते हैं रोज़ा रखो तो रख लेंगे, नहीं कभी भी नहीं। आप नहीं कहें, उनका दिल उनको कहे। क्यों भाई, कैसे? मिसाल लीजिए, देखिए आपकी मेड है, उसको पता है कि आपने उसको एंड ऑफ द मंथ 5,000 रुपये देने हैं, आपकी बनेगी ना, ये धो दो, ये कर दो, इधर कर दो, आज जल्दी आ जाओ, आज देर से जाना, मेहमान आए, ये वो करती है ना, बड़े शौक से करती है। यही बातें आपकी नेबर दे दें उसको, एक दफ़ा कर दे कि इस उम्मीद पर कि शायद ये पैसे दे देगी, दो चार दफ़ा नहीं, वो कहेगी तुम मेरी हमसाई की नौकर हो ना, तो मेरी भी बनो, मानेगी, जाएगी भी, आपको कहेगी मैंने नहीं जाना भाजी उनके घर, आप कहती है जाओ बिरयानी की प्लेट दे, वो मुझसे काम कराती हैं। बिल्कुल, गैर का नौकर, गैर की नहीं आपकी मानता है, तो आपका जिस्म, आपकी आंखें आपकी नहीं मानेंगी, दिल की मानी। आप अपने बच्चे को कहते हैं ये मत देखो, ये आपकी हैसियत माजरत के साथ माँ तो हैं, आप बाप भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी हैसियत हमसाई की है, आपके बच्चे पे हुक्मरानी उसके दिल की है। आप अच्छी माँ हैं ना, तो वो क्या करेंगी, और अच्छे उस्ताद भी यही करेंगे कि बच्चे का दिल बदल दें। फिर दिल कहेगा ये ना देखो, ये ना सुनो। आजकल मेरे टीचर्स में से कुछ बच्चे भी हैं, कल उनके साथ भी एक बात है, वो भी याद आ गई इधर। अपने बच्चों से सीखिए, ये टीचर हैं आपके, जो ये करते हैं आप ना कीजिए, और जो ये करते हैं कभी करके देखें, आपके अंदर का बच्चा कभी नहीं मरना चाहिए। हम बच्चों के साथ खपते रुलते, उनकी फिक्रें करते, उनके मुस्तकबिल के अंदेशे, पढ़ लो पढ़ लो, एक माँ के सर में चार बाल देखे सुफेद का, क्या कहती इनके साथ खप खप के हो गए। तो जो नानी दादी थी कहनी कि कोई PhD पे कर रहे है जेड़ा तेने इतना फिक्र लग गया, मास्टर कर रहे है, कोई कॉलेज है, क्या होगा, नहीं बच्चा स्कूल गया तो ना, सोने तो मासूम बच्चा, उन्होंने क्या उसको फारसी सिखा लेनी है, तुम घर बैठ के सिखा लो। और कई दिन से मैं सोच रही हूँ, मैंने अपने घर में भी इस बात को शेयर किया कि ये जो लॉकडाउन ने तरीक़े तालीम दिखाया है ना आज हमें रास्ते में, कि माएँ साथ बैठती हैं तो बच्चे नट से भी पढ़ते हैं ना, ये फितरी था। ये तो हमने गधे का बोझ कमरों पे लदा के 15 15 साल उनको इतने तोड़े बस्तरों के उठा उठा के स्कूलों में भेजा, हमें पता तक नहीं बच्चे कर क्या रहे हैं। यकीन कीजिए इस लॉकडाउन ने इस्लाम का आधे से ज़्यादा तर्ज ज़िंदगी सिखा दी है इंसानियत को, होम स्कूलिंग सिखा दी है। अब बच्चों को मुश्किल लग रहा है स्कूलों में जाना, मैं कहती हूँ माँ घर में स्कूल बना दे, बच्चे को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बात समझ आई, कि अपने बच्चों के दिल बदल दीजिए, उनके दिल कहे उनको। कल कुछ कॉन्वर्सेशन हुई बच्चों के साथ, तो मैं उनको कायल कर रही थी कि देखिए आपने 30 रोज़े तो रख लिए ना, एक भी छोड़ा है आपने, सब ने अपना अपना बता दिया, नहीं छोड़ा, ये नहीं वो नहीं वो नहीं। तो मैंने कहा अब एक महीना ही गुजरा है ना, अभी तो महीना भी नहीं गुजरा, अभी तो 20 दिन गुजरे होंगे, चलिए तो आप अगर 6 रोज़े रख लेते हैं। एक बच्चा कहने लगा आंटी ये ऑब्लिगेटरी है, मैं कहा क्यों, कहते मामा ने कहा था, वो माँ पे मुर्दा डाल दिया ना बच्चे ने। मैंने कहा बेटा आप ऑब्लिगेटरी को छोड़ो, एक ऑब्लिगेटरी वो होता है जो अल्लाह आप पे करता है, और एक वो है जो आप खुद अपने ऊपर करते हैं। फिर मैंने उसको मिसाल दी कि आपके घर कोई मेहमान आए, आप एक महीना उसकी खूब खातर करें, खिदमत करें, बहुत उसका ख्याल रखें, फिर अगले महीने में आप बिल्कुल ही ना पूछें, आपको बोझ लगे मुश्किल लगे तो उसको कैसा लगेगा, कह रहा बहुत बैड मैनर लगेगा, बुरा लगेगा। और इसी तरह की दो चार मिसालें दी, यकीन करें 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन ही सारे बच्चे रोज़ा रखने पर तैयार थे। मेहमान जो कहेगा कि आपने एक महीना तो बड़ी खातर की, अब नहीं कह रहे, तो अल्लाह नहीं कहेगा, आपकी मामा आपको कोई काम कहें और आप कर दें, और फिर बाद में वो देखेंगे भला आप खुद करते हैं अब के नहीं, तो आप ना करें तो मामा को हर बात का जवाब, माशाल्लाह मेरी उम्मीद से अच्छा। और एंड पे फैसला ये था कि अब हम 6 रोज़े रखेंगे। वल्लाही अपने बच्चों को इतना अंडर एस्टिमेट ना करें। तो फिर वापस आ जाते हैं इस उस्ताद पे, इंसान, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इसमें बड़े भी लोग हैं, इंसानों में रहिए। पर्सनैलिटीज़ की जो 36 काइंड है ना, उसमें एक काइंड होती है लोगों में रहने वाला, एक मशीनों में रहता है बड़ा कामयाब, कहता मेरे मत्थे कोई ना लगे, मुझे चाय भी देनी है तो बाहर रख देना मैं ले लूँगा। मशीनों में कामयाब बंदों का मिजाज ना पड़ना है, किस पे कोई खुश होता, क्या उसकी तमन्ना है, उसको मुस्करा कर देखने से, उसकी बात मान के, उसकी तरफ निगाह करके हज का सवाब मिलता है, वो नहीं लेगा माँ से। किसी बंदे का दिल खुश करके बंदा क्या नेक होता है, वो कहता नहीं मैं हज कर आऊँगा उम्रा कर लूँगा, लेकिन ये नहीं मुझसे होता। तो ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं। तो जब ओवरऑल आप इंसान पे गौर करते हैं ना, तो आपको समझ आता है कि एक का बनना, आप जब अपने वजूद पे गौर करते हैं, क्योंकि ये तो अपनी तलाश है ना, ये खुद आ गई है, ये अपनी तलाश है, ये डिस्कवरी चैनल है। आप अपने बारे में क्या कहते हैं, आप भी खुद से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने पर काम करना पड़ेगा। और जब मैं इंसानों की बात करूं, तो फिर हमें यकीनन किसी ऐसे का तो जिक्र ज़रूर करने की ज़रूरत पड़ती है ना जो बहुत कामयाब हो, और एक नुस्खा भी चाहिए होता है, और हमारे लिए नुस्खा है कीमिया, ज़ालिकल किताब ला रईब फ़ी हुदल मुत्तकीन, कि इस किताब से खूबसूरत सिलेबस दुनिया में कोई नहीं है। कायनात पे गौर कर लें, कायनात की बड़ाई मान लीजिए, इंसान के वजूद पे गौर कीजिए, एक अल्लाह है, दो नहीं है, तीन तो हो ही नहीं सकते, और जिन्होंने ये कह दिया कि ऊपर एक और नीचे 4,000 4 करोड़, तो उनकी मत मारे में जाने में क्या शक है। आपका मेरा काम एक है कि अल्लाह की इस किताब से एक सबक लीजिए, ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, और शैतान के कदमों की ताबेदारी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्या पता चला कि वही रब जिसने कायनात बनाई एक फेल की सूरत में, उसी ने किताब दे दी एक कॉल की सूरत में, क्योंकि बल हुआ कलामुल्ला। और एक जुमला अब लिखाने लगी हूँ, उसके कॉल और फेल में तजाद नहीं है। कायनात अल्लाह का फेल और कुरान उसका कॉल है।